कार्यक्रम।
प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीव वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें। मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
पल पल मसीह के प्यार में बीतेंगे उम्र भर, जब तक है सांस गाऊंगा गूंजेगी हर डगर। पल पल मसीह के प्यार में बीतेंगे उम्र भर, जब तक है सांस गाऊंगा गूंजेगी हर डगर। अब जिंदगी बसर पल पल मसीह के प्यार में बीतेंगे उम्र भर, जब तक है सांस गाऊंगा गूंजेगी हर डगर। चले दूं कहीं जिधर पल पल मसीह के प्यार में जब तक है सांस गाऊंगा गूंजेगी हर नगर। मसीह के प्यार में बीतेंगे उम्र भर। जब तक है सांस गाऊंगा गूंजेगी हर डगर। पल पल मसीह के प्यार में बीतेंगे उम्र भर। जब तक है सांस गाऊंगा गूंजेगी हर डगर।
प्रिय श्रोता मित्र नमस्कार, मुझे आशा है कि परमेश्वर पिता की महान करुणा से आप सकुशल होंगे और प्रतिदिन हमारे सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को सुनकर आत्मिक लाभ उठा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम की आठवीं पुस्तक यानी कुरिन्थियों की मंडली के नाम संत पौलुस की दूसरी पत्रिका अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के द्वारा हमने परमेश्वर के वचन से अनेक नवीन सत्य के विषय में सीखा। एक से चार अध्यायों में हमने जीवन की भिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की महान शांति के विषय में अध्ययन किया है। पिछले कार्यक्रम में हमने सीखा कि परमेश्वर पिताजी प्रत्येक विश्वासी जन को एक स्वर्गीय देह प्रदान करेंगे। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट भी हो जाए तो भी परमेश्वर से हमें एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बनाया हुआ अल्पकालिक नहीं वरन चिरस्थाई होगा। परंतु कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस की दूसरी पत्री और उसके पांचवें अध्याय और उसके 9 और 10 पदों में मसीह के न्याय आसन तथा भले बुरे कामों के प्रतिफल के विषय में पढ़ा। हमने सीखा कि इस न्याय आसन के समक्ष केवल विश्वासी जन अपने कार्यों के अनुसार प्रतिफल प्राप्त करने के लिए उपस्थित होंगे। ये वे कार्य होंगे जो उद्धार प्राप्ति के पश्चात उसने अपनी देह के द्वारा किए हैं। मित्रवर, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना ये भिन्न बात है और उस उद्धार के अनुसार जीवन व्यतीत करना दूसरी बात है। हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर होना आवश्यक है, क्या अब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित हैं? क्या हम अपने विश्वास के अनुसार कार्य कर रहे हैं? मसीह के लिए जीवित रहने का तात्पर्य है प्रभु यीशु मसीह की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करना। एक बार एक महान सेवक को यह आभास हुआ कि प्रभु जी उससे कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने एक महान सेवा के लिए चुनकर अलग कर लिया है। अब तुम्हें यह निश्चय करना है कि तुम मेरे सेवक बनना चाहते हो या एक महान प्रचारक। मेरे और आपके समान इस व्यक्ति के मन में भी पहला विचार यही आया कि मैं एक महान प्रचारक बनना चाहता हूं। श्रोता, यह विचार भी बुरा नहीं था, परंतु प्रभु ने पुनः उससे यही प्रश्न किया, क्या तुम एक महान प्रचारक बनना चाहते हो या मेरे सेवक बनना चाहते हो? प्रचारक ने आभास किया कि मुझे इन दोनों में चुनाव करना है। सेवक ने प्रभु से कहा, ओ मेरे धन्य प्रभु, मैं तेरा सेवक बनने के अतिरिक्त और कुछ बनना नहीं चाहता। प्रभु ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी, जो कोई तुम में प्रधान बनना चाहे वो सबका सेवक बने। श्रोता मित्र, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को ना केवल अपना सेवक ही बनाया, परंतु उसने उसे एक महान प्रचारक भी बनाया। और इस महान प्रचारक का नाम डॉक्टर जी सी मॉर्गन था। परमेश्वर पिता ने अपने भक्त यर्मिया नबी के द्वारा ये बात बताई, सुन, क्या तू अपने लिए बड़ी बड़ी बातों की खोज में है? उन्हें मत खोज, क्योंकि देख, मैं सारे प्राणियों पर विपत्ति डालने पर हूं। मित्र, क्या आप अपने लिए बड़ी बड़ी वस्तुओं की खोज में तो नहीं? संभवतः आप उसका अंत नहीं जानते, परंतु परमेश्वर अंत अर्थात परिणाम को जानता है। वो चाहता है कि आप नाश ना हो। वो नहीं चाहता कि मैं नाश हो जाऊं। और जिस प्रकार आज प्रभु अपनी उद्धार की इस महान योजना को रेडियो के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा है, उसी प्रकार एक दिन उसने मेरे उद्धार की योजना को एक प्रचारक के द्वारा मेरे समक्ष रखा और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। और अब मुझे अपना अंत मालूम है। मैं जानता हूं कि इस शारीरिक मौत के पश्चात मेरे पास अनंत काल का चिरस्थायी जीवन है। ओह, आज अनेक प्रचारक हैं, अनेक विश्वासी जन हैं, मसीही सेवक हैं, जो महान बनने की तीव्र इच्छा रखते हैं, परंतु इस इच्छा के पीछे स्वार्थ है। पर यदि आप वास्तव में महान बनने की इच्छा रखते हैं, तो पहले आप प्रभु का साधारण सेवक बनने को तैयार हों। मुझे और आपको ये निश्चित करना है कि हम वास्तव में प्रभु के सेवक हैं या नहीं। मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे प्रभु के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना है और अपने कार्य व सेवा का लेखा देना है। इसी प्रकार आपको भी। इसलिए हमें उसकी सेवा इस प्रकार करनी चाहिए कि वो ग्रहण योग्य हो। अर्थात ये विचार हमें प्रभु को ग्रहण योग्य सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मित्रवर, आज हम एक नए सत्य के विषय में सीखेंगे। वो नवीन सत्य है परमेश्वर का भय, जो हमें दूसरे लोगों को सिखाने व समझाने के लिए उकसाता है। सो आइए मेरे साथ प्रभु के वचन से आज के बाइबल पाठ को सुने। आप अपनी बाइबल को खोलकर मेरे साथ देखें। हम पढ़ेंगे कुरंथियों के नाम संत पौलुस की दूसरी पत्री, उसका पांचवा अध्याय और 11वें पद से लेकर 21वें पद तक। मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। यहां इस प्रकार से लिखा है, अतः हम प्रभु का भय मानते हुए लोगों को समझाते हैं, परंतु हमारी दशा परमेश्वर के सामने खुली है और मैं आशा करता हूं कि हमारी ये दशा तुम्हारे विवेक में भी खुली है। हम फिर अपनी प्रशंसा तुम्हारे सामने नहीं कर रहे हैं, परंतु तुम्हें अवसर दे रहे हैं कि हम पर गर्व करो और उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं पर दिखावे पर घमंड करते हैं। क्योंकि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह सबके लिए मरा कि वह जो जीवित हैं आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना है, तथापि अब से हम उसे ऐसा नहीं जानते। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया है और हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। अर्थात परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर ना लगाते हुए मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा है और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। माना परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर के इस वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। मित्रवर, प्रभु का भय, ये शब्द पवित्र शास्त्र में अनेक बार प्रयोग हुआ है। नीति वचन का लेखक बताता है, परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है, और यदि आप इसे देखना चाहें तो आप नीति वचन 9 अध्याय के 10वें पद में देख सकते हैं। इब्रानियों की पत्री में हमें बताया गया है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयंकर बात है, और आप इसे देख सकते हैं इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय और उसका 31वें पद में। मित्रवर, परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, वो आपको पाप के दंड से बचाना चाहता है, परंतु यदि आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको उसके न्याय का सामना करना होगा, और उस दिन वो आपके लिए अति भयंकर बात होगी। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हम प्रभु का भय मानते हुए लोगों को समझाते हैं। श्रोता, आज संसार को परमेश्वर के दंड से भयभीत होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भय हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा। संभवतः आप इसी भय के कारण परमेश्वर को स्वीकार करें और विनाश से बच जाएं। स्मरण रखिए, स्वर्ग में कोई नहीं है, वहां केवल प्रभु यीशु मसीह है। वह मृतकों में से जीवित होने वाले प्रभु हैं। प्रत्येक विश्वासी को मसीह के न्याय आसन के समक्ष खड़ा होना है। संत पौलुस बताते हैं कि हमारी सेवकाई यही है कि हम परमेश्वर के न्याय के प्रति लोगों को बताएं, उन्हें जागरूक करें, और इस बात को तुम भली भांति जानते हो। यहां पौलुस कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम तुमसे अपनी प्रशंसा चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि तुम हमारे द्वारा की गई सुसमाचार की सच्ची सेवा पर उनके सामने गर्व करो जो बाहरी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस प्रकार संत पौलुस का तात्पर्य है कि सेवक को अपने भीतरी व बाहरी जीवन को स्पष्ट और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनाकर रखना चाहिए, ताकि जिनके मध्य वो सुसमाचार प्रचार सेवा कर रहा है वे उस पर गर्व कर सकें। इसलिए सेवक का मुख्य कार्य है कि वो परमेश्वर का भय मानते हुए दूसरों को समझाए। अपनी प्रशंसा के लिए चापलूसी और दूसरों को लुभाने वाली बातें ना करें। हम स्मरण रखें, हमें मसीह के न्याय आसन के समक्ष अपनी सेवा का लेखा देने के लिए उपस्थित होना है, क्योंकि इसी पर हमारा प्रतिफल निर्भर करता है। 13-15 पद तक पौलुस बताते हैं कि यह मसीह का प्रेम है जो हमें सुसमाचार की सेवा करने के लिए परमेश्वर के न्याय के विषय में बताने के लिए, संकट व क्लेश उठाने के लिए तथा प्रभु के भय में दूसरों को समझाने के लिए विवश करता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों के बदले अपना प्राण दिया, उसी प्रकार वे भी जो मसीह पर विश्वास लाते हैं वे पाप के लिए मर जाते हैं, और जैसे मसीह सबके लिए जीवित हुआ, उसी प्रकार वे भी जो उस पर विश्वास लाते हैं अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहेंगे। इस पृथ्वी को भरने के लिए परमेश्वर ने आदम की रचना की, परंतु परमेश्वर पर संदेह करने तथा आज्ञा उल्लंघन के परिणाम स्वरूप पाप में गिर जाने के कारण वह शारीरिक व संसारिक बनकर रह गया। इसलिए यह जीवन अब अल्पकालिक और नश्वर है, परंतु परमेश्वर ने स्वर्ग को पुनः मानव से भरने के लिए दूसरे आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। उसका जन्म पवित्र आत्मा द्वारा हुआ, इसलिए वह जीवनदायक आत्मा बना, और अब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है वह स्वर्ग के राज्य का निवासी घोषित कर दिया जाता है। अब जो आदम से है वह पुरानी सृष्टि है, परंतु जो मसीह से है वह नई सृष्टि है। जो पुरानी सृष्टि है वह शारीरिक है, जो नई सृष्टि है वह आत्मिक है। उनका संचालन पवित्र आत्मा द्वारा होता है। ये परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर की नई सृष्टि के निवासी हैं। पुरानी सृष्टि नश्वर तथा अल्पकालिक है, परंतु नई सृष्टि चिरस्थाई तथा अविनाशी है। 16-19 पद तक हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप से जानने का तात्पर्य क्या है। आज से लगभग 1900 वर्ष पूर्व मसीह यीशु ने इस भूमंडल पर जन्म लिया। वह इस भूमि पर चले फिरे, वह बैतलहम में जन्मे, नासरत में पले बड़े, और गलील प्रदेश में अपनी सेवकाई की और यरूशलम में जाकर क्रूस पर अपना प्राण दिया और अरमतिया के यूसुफ की कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुए और अपने प्रियों के समक्ष प्रकट हुए और 40 दिन के पश्चात वह लोगों के देखते देखते स्वर्ग वापस चले गए। आज एक विशाल जनसमूह मसीह को इसी रूप में जानता है, परंतु आज भी अनेक हैं जो उन्हें मात्र एक बड़े के पुत्र के रूप में, गलील के प्रचारक के रूप में तथा नासरत के निवासी के रूप में जानते हैं। परंतु पौलुस कहते हैं कि अब से हम मसीह को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। क्यों? इसका जवाब है दमिश्क के मार्ग पर पौलुस की जीवित प्रभु यीशु मसीह से प्रत्यक्ष भेंट तथा सुसमाचार प्रचार अर्थात मसीह की मृत्यु तथा पुनरुत्थान के प्रचार द्वारा कलीसिया का जन्म तथा कलीसिया के मध्य पवित्र आत्मा का कार्य। स्मरण रखें, कलीसिया अन्य जाति विश्वासियों तथा यहूदी विश्वासियों से बनी है। यही महान आश्चर्य कर्म है। नई सृष्टि, नया मनुष्यत्व। नई का तात्पर्य है पुरानी बातें समाप्त हो जाना, उसके स्थान पर नई बातें आ गई, स्वर्गीय बातें आ गई। मित्रवर, ये नई बातें हैं, नई शिक्षा, नया विश्वास, नई आशा, नया स्वभाव, नया आचरण, नया मनुष्यत्व। मित्र, क्या आपने इस नवीनता का अनुभव किया है? 18वें पद के अनुसार हम ये देखते हैं कि अब ये सब कुछ मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि उस परमेश्वर पिता की ओर से है जिसने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया। आइए हम एक और पद देखें, कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 21 और 22 पद। आप अपनी बाइबल में मेरे साथ ध्यान दीजिए। लिखा है, तुम पहले तो अलग किए हुए और मन से बैरी थे और बुरे कामों में लगे हुए थे, फिर भी उसने अपनी शारीरिक देह से मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल कर लिया है कि तुम्हें अपने समक्ष पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रियो, कितने सुंदर वचन हैं। ये महान कार्य स्वयं ही पूर्ण करने के पश्चात ये मेल मिलाप की सेवा प्रभु जी ने अपने विश्वास लाने वालों को सौंप दी कि हम मनुष्य का मेल परमेश्वर से करा सकें। और इस मेल मिलाप के महान और अनोखे संदेश का प्रचार पृथ्वी के छोर तक पहुंचा दें ताकि कोई मानव परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। वास्तव में सुंदर और अद्भुत संदेश है ये कि परमेश्वर मनुष्य के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाना चाहता बल्कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में जगत के पापियों का मेल मिलाप अपने साथ करना चाहता है। मित्रवर, ये सुसमाचार है। आज अनुग्रहकारी परमेश्वर अपने पुत्र मसीह यीशु के बलिदान के फल स्वरूप आपसे अपना मेल मिलाप करना चाहता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए 20 और 21 पदों को पढ़ें। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, माना परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय और उसके 20वें पद में संत पौलुस कहते हैं कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। प्रियो, क्या आप राजदूत के विषय में जानते हैं? राजदूत सबसे उच्चतम स्तर का अधिकारी होता है जो अपनी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति होता है। जब पौलुस कहते हैं कि हम मसीह के राजदूत हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम यहाँ परदेशी हैं, क्योंकि राजदूत विदेशी भूमि पर रहकर अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। संत पौलुस बताते हैं कि हम यहाँ परदेशी और अजनबी हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 20वें पद में हम पढ़ते हैं, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। अब चूंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, इसलिए हम यहां पर यानी पृथ्वी पर मसीह के राजदूत हैं। संत पौलुस बताते हैं कि मानव परमेश्वर हमारे द्वारा जगत से विनती कर रहा है। श्रोता मित्र, प्रभु यीशु ने इस भूमंडल पर आकर मेरा स्थान ग्रहण कर लिया। वो धर्मी प्रभु था, परंतु मेरा पाप अपने ऊपर लेकर स्वयं पाप बन गया। उसने पापी को नहीं वरन पाप को दंड दिया, पाप की मजदूरी को उठा लिया और क्रूस पर मर गया। और परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जिस प्रकार उसने मेरे स्थान पर मृत्यु को सहा और उसकी मृत्यु मेरी मृत्यु बन गई, उसी प्रकार तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होकर उसने अपनी धार्मिकता में मुझे सहभागी कर लिया। उसके जी उठने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। इसलिए जब विश्वास द्वारा हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, उसी क्षण हम पापों से क्षमा तथा धार्मिकता प्राप्त करते हैं। प्रिय श्रोता मित्र, हम आशा करते हैं कि आपको आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम से बहुत आशीष मिली है। जाने से पहले हम चाहते हैं कि हम कुलुसियों की पत्री उसका एक अध्याय और 21 और 22 पद को फिर से पढ़ लें। आप मेरे साथ अपनी बाइबल पर ध्यान दें। लिखा है, तुम पहले तो अलग किए हुए और मन से बैरी थे और बुरे कामों में लगे हुए थे, फिर भी उसने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल कर लिया है कि तुम्हें अपने समक्ष पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रिय श्रोता मित्र, हम आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है, तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिख कर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।